शांति। बहुत बहुत समय पहले ईरान में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था खुशरो, और उसे एक दिन पता चला कि उसका जो सेनापति है रुस्तम, वो उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, सत्ता पलटने की कोशिश कर रहा है, ऐसी योजना बना रहा है जिसमें राजा मर जाए और वो खुद राजा बन जाए। तो उस राजा को जैसे ही ये पता चलता है, वो अपनी एक मंत्रिपरिषद की मीटिंग बैठक बुलाता है जिसमें बाकी सभी मंत्री कहते हैं कि इस सेनापति को तुरंत पकड़ लिया जाए और इस पर कार्रवाई की जाए, सजा सुनाई जाए। तो राजा कहता है ठीक है, और दूसरे दिन वो राजा उस सेनापति को अपने कक्ष में बुलाता है और बुलाकर उसका बहुत सम्मान करता है, उसका बहुत स्वागत करता है, उसे बहुत सारे बख्शीश देता है। ये सब देखकर बाकी सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये क्या कर रहा है राजा, इसे तो पकड़ना चाहिए था, सलाखों में बांधना चाहिए था, इसे तो कारागार में डालना चाहिए था, पर ये राजा कर क्या रहा है? उसका बहुत सत्कार कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, उसे बहुत सारे बख्शीश दे रहा है, और वो सेनापति अंदर ही अंदर पिघलने लगता है और वहां से चला जाता है। बाकी लोग उससे, राजा से पूछते हैं, आपने ये क्या कर दिया, उसे पकड़ा क्यों नहीं, उसे सलाखों में बांधा क्यों नहीं? वो राजा कहता है मैंने उसे सलाखों में बांधा, पर कौन सी सलाखों में? दिलों की सलाखों में, चेन्स ऑफ लव। मैंने भी उसे पकड़ा। तो ये एक अनोखी सजा उस राजा ने उस सेनापति को दी, पर ऐसी सजा दी कि जिससे वो सेनापति हमेशा के लिए बदल गया। आज सुबह की साकार मुरली, तुम एक एक कौन हो जो लोहे को क्या करता है? पारस। लोहे को सोना बना देता है। तुम एक एक पारस मणि, पारस नाथ की संतान, मास्टर पारस नाथ हो। जैसे अगर किसी धोबी के पास जाओ अपने बहुत सारे कपड़े लेकर, तो वो कभी ऐसा कहता इतना काला क्यों कर दिया? कहता है क्या इतने गंदे क्यों कर दिए कपड़े? कभी नहीं कहता है। जो भी कपड़े उसके पास आते हैं वो ले लेता है और उसकी धुलाई करता है। वैसे ही पारसनाथ अर्थात ये नहीं कहेंगे कि तुम कितने काले लोहे हो, जो हो जैसे हो जैसे भी हो स्वीकार किया गया। तो जैसे हमको बाबा ने स्वीकार किया, हमें भी दूसरी आत्माओं को स्वीकार करना है, उनके सभी दोष, उनकी सारी कमियां, उनके व्यक्तित्व में चरित्र में जो कुछ भी है, यदि हमें उन्हें परिवर्तन करना है तो हमें उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो बाबा ने आज कहा कि ये नहीं कहो कि ये लोहा क्यों है। पारस का काम क्या है? चाहे कैसा भी लोहा हो जाए उसको वो परिवर्तन कर देता है। क्या ऐसा कोई वास्तव में पत्थर होता है? आज तक किसी ने देखा नहीं है इस पत्थर को, फिलोसोफर स्टोन। ना इसकी पर सर चर्चा सभी धर्मों में है, सभी देशों में है, सारे विश्व में सब जगह है, पर आज तक किसी ने देखा नहीं है ऐसा कोई पत्थर कि जो उठाओ और लोहे को लगा दो और लोहा सोना बन जाए। परंतु बहुत सारी कहानियां हैं इसकी, बहुत सारी कहानियां, केवल भारत में ही नहीं विदेश में भी। हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन्स, सभी देशों में कहानियां हैं कि ऐसा पत्थर जो लगा दो और धातु परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो पत्थर हो या ना हो वो दूसरी बात है। बाबा हम सबको रूहानी पारसमणि बनाना चाहता है, स्पिरिचुअल फिलोसोफर्स स्टोन, क्योंकि आत्माएं लोहे जैसी हो गई है। लोहे जैसी अर्थात तमोप्रधान, विकारी, पतित, भ्रष्ट, ऐसी विकारी डिग्रेडेड भ्रष्ट आत्माओं को फिर से सत्वप्रधान बनाना, यह हमारा काम है। तो बाबा ने आज कहा तुम्हें पारसमणि, पारसनाथ बनना है। प्रश्न है कैसे बने, क्या हम करें कि जिससे हम भी पारसनाथ बन जाए। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आए उनके अंदर सूक्ष्म परिवर्तन आ जाए। व्यक्ति को यदि परिवर्तन करना है, हो सकता है कि बस 5 मिनट की कोई अनुभूति उसे परिवर्तन कर दे। एक एक घंटा लेक्चर सुनने के बाद जो असर नहीं हुआ वो केवल उस 5 मिनट में हो जाता है। वो 2 सेकंड की दृष्टि आत्मा को परिवर्तन कर देती है, एक गहराई में डुबो देती है। बड़े बड़े लेक्चर सुनकर व्यक्ति जो परिवर्तन नहीं होता है, वो कोई साधारण से व्यक्ति की साधारण सी बात सुनकर परिवर्तन हो जाता है। जैसे इसके पहले भी कभी सुनाया था, एक सन्यासी पहाड़ी पर चढ़ रहा है, बहुत धूप है, उसके पास सामान है, थक गया है, परंतु उसे चढ़ना है। सोचता है कैसे चढ़ूं, पर चढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, और देखता है एक छोटी सी लड़की, उसके पीछे एक छोटा बच्चा भारी सा, उसको पीठ पर लेकर चढ़ रही है पहाड़ पर, और बहुत खुश है, और उससे तो उम्र में बहुत ही छोटी है, सन्यासी तो बड़ा है, और वो बहुत खुशी खुशी से उस पहाड़ी पर चढ़ रही है। वो दोनों बीच में आ गए, वो उधर से वो इधर से। वो सन्यासी को आश्चर्यचकित होता है, इसके चेहरे पर जरा भी थकान नहीं है, ये जरा भी थकी नहीं है, और इतनी खुशी खुशी से चढ़ रही है, और मैं तो क्लांत, दुखी और उदास हो गया हूं ये चढ़ते चढ़ते इतना बड़ा पहाड़। वो उस लड़की को पूछता है कि तुम कौन हो, تو وہ کہتی ہے میں پہاڑی لڑکی ہوں، یہیں نیچے گاؤں میں رہتی ہوں، پہاڑ پر جا رہی ہوں. تو وہ سنیاسی کہتا ہے یہ چھوٹا سا لڑکا اتنا بھاری، اس کو تم پیٹھ پر لیے جا رہے ہو، تم کو بھاری نہیں ہوتا ہے؟ تم تھکتی نہیں؟ کیونکہ وہ خود تھکا ہوا ہے. وہ کہتی ہے یہ میرا بھائی ہے اور بھائی کا بوجھ نہیں ہوتا. He is my brother. اور بھائی کا بوجھ نہیں ہوتا. وہ سنیاسی جس نے اتنے سارے شاستر پڑھے، وہ سنیاسی جو دوسروں کو گیان سناتا ہے، وہ سنیاسی جو پروچن کرتا ہے، اس چھوٹی سی بچی نے اسے ایک ایسا پاٹ پڑھا دیا جو اس نے اتنے ورشوں کی سادھنا میں نہیں پڑھا، کہ جہاں پریم ہے وہاں پر بوجھ نہیں ہے. بوجھ لگ رہا ہے، تھکان ہو رہی ہے، کیونکہ شاید پریم کی کمی ہے. اس بچی کو کوئی بوجھ نہیں لگ رہا ہے کیونکہ وہ کہتی ہے میرا چھوٹا بھائی ہے. سمبندھ آ گیا وہاں پر، پریم آ گیا. تو جیسے ہی پریم اور سمبندھ ہے، وہاں پر کوئی بوجھ نہیں، کوئی تھکان نہیں، کوئی الجھن نہیں. تو یہ سبق، یہ پاٹھ وہ سنیاسی اس چھوٹی سی بچی سے پڑھتا ہے، اور یہ چھوٹا سا ایک واقعہ اس بچی کا اس کے ہردے میں بہت بڑا پریورتن ڈال لیتا ہے، جو کہ روز روز کی کتابیں پڑھنے سے بھی نہیں ہو رہا تھا. اس لیے مدھوبن ایسی ایک بھومی ہے کہ یہاں جب آؤ تو ادھک سے ادھک سمے بابا کے سمیپ رہنے کا ابھیاس، ادھک سے ادھک سمے مون کا ابھیاس، ادھک سے ادھک سمے یوگ کے لیے دینا ہے. کتابیں تو وہاں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، کلاسز تو یہاں وہاں بھی سنی جا سکتی ہے، پر انوبھو لینے کا ستھان مدھوبن ہے. یہاں آنے کے بعد اپنے آپ کو سبھی باتوں سے مکت کر دینا ہے، اور جتنا ہو سکے اس مون میں، اس ایکانت میں، اس انتر مکتا کی استھتی میں بابا کے ساتھ ادھک سے ادھک سمے بتانا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کس سمے وہ انوبھو آ جائے. وہ انوبھو ہمارا انتظار کر رہا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی بھی کشن، کسی بھی پل وہ ہے، راؤنڈ دا کارنر، کبھی بھی نکل کے باہر آ جائے گا. کیول ہم تیار رہنا چاہیے. بابا تو بیٹھا ہوا ہے، کچھ ایسا انوبھو کرا دے گا کہ جو اتنے سال کا برہمن جیون ہے، 15 سال، 10 سال، 20 سال، اس میں جو چیز نہیں ملی وہ اچانک سے ایک دن یہاں مل جائے گی، آج، ابھی، اسی وقت. اور کس کے دوارا؟ ہو سکتا ہے کوئی ان پڑھ سی ماتا ہے، اس کے دوارا، کوئی بھائی جس سے ہمارا کوئی سمبندھ نہیں ہے، جو 5 منٹ کیول سمپرک میں آیا اور پریورتن کر دیا اس نے. جیسے وہ پولیس کمشنر صاحب نے انوبھو سنایا تھا، منموہنی ون میں رکے تھے نیچے، شانتی ون جانا تھا، بس نکل گئی تھی تو وہ رکے تھے، وہ دوسرا بھائی آیا اپنی سائیکل لے کر. اب اسے کیا پتا یہ کون ہے، اس نے کہا چلو میں آپ کو سائیکل پہ چھوڑ دیتا ہوں. تو پولیس کمشنر سے آپ کو سامنے کا جو ڈنڈا ہے اس پہ بٹھایا، ان کا سامان پیچھے لگایا اور سائیکل سے ایسی ادھر ادھر کی اچھی اچھی باتیں کرتے ہوئے بابا کی ادھر تک چھوڑ دیا. وہ کمشنر صاحب 3 دن سے لیکچر سن رہے تھے وہاں پر، اچھے اچھے بڑے بڑے لیکچرز، گیان، یوگ، آتما، پرماتما، پر ان سب کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا. پر یہ جو بھائی جو آ گیا، اسے تو یہ بھی نہیں پتا کون سی کانفرنس چالو ہوئی، ابھی بھی ہے وہ بھائی نیچے، تو ڈنڈے پر بٹھا کر وہاں چھوڑ آیا. بس اس کا یہ بھولاپن دیکھ کر یہ ان میں پریورتن آیا. آتما کی پوترتا سے بڑا اس سنسار میں اور کچھ بھی نہیں ہے. پیورٹی آف سول، इससे बड़ा इस संसार में और कुछ भी नहीं है। ज्ञान ये सब बाद में आता है, तर्क प्रेम से ही आत्माएं परिवर्तित होती है। तो बाबा ने कहा तुम हो पारसनाथ, और संसार की आत्माएं दुखी है, उदास है, तमो प्रधान है, दुखों में डूबी हुई है, बहुत परेशान है। तुम्हें उन सब को छुड़ाना है, तो सबसे पहले तो स्वयं को छुड़ाना पड़ेगा दुखों से, इम्प्यूरिटी से। तब हम जाकर जो भी लोहा है उसको सोना बना सकते हैं। तो क्या हम करें कि जिससे हम पारसमणि बन जाए और जिसके भी संपर्क में आए वो परिवर्तन हो जाए। तो कुछ बातें हम इसके लिए देखेंगे। सबसे पहला है संकल्प। बाबा ने कहा तुम संकल्प से आत्माओं की सेवा करो, संकल्प से संकल्प परिवर्तन होगा। कोई आत्मा है जो बहुत दूर है, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते, पर संकल्प कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। संकल्प के लिए कोई बाधा नहीं है। इस सृष्टि में हम कोई भी संकल्प करके किसी भी आत्मा तक पहुंच सकते हैं। हिमालय की चोटियों में एक सन्यासी रहता था और वो बहुत कम लोगों के संपर्क में आता था। अमेरिका से एक जर्नलिस्ट आया और उसे पता चला कि एक योगी है, महान योगी, अ ग्रेट मिस्टिक। वो उस योगी के पास गया, उस बर्फीली चोटियों में, उस छोटी सी एक कुटिया बनाकर वो वहां रहता था। ये जर्नलिस्ट पत्रकार उस योगी से कहता है आप हमारे अमेरिका चलो, वहां बहुत सेवा होगी, वहां की आत्माएं बहुत दुखी है, आप जैसे योगियों की बहुत आवश्यकता है। तो योगी कहता है मैं यहीं बैठकर आपके देश की जितनी सेवा कर रहा हूं ना, वहां आकर नहीं करूंगा, यहीं पर मैं अपने संकल्पों से विश्व की सेवा कर रहा हूं। पावरफुल थॉट, एक संकल्प यहां क्रिएट कर दो और वो संकल्प उस आत्मा को जाके टच हो जाएगा। कब टच होगा? जब हमारा इंटेंशन बहुत प्योर होगा, कोई स्वार्थ नहीं है उसमें, बहुत बहुत प्योर, उसमें कोई स्वार्थ नहीं, उसमें कोई लगाव नहीं। यहां बैठे हैं और वह आत्मा दूर कहीं पर है विश्व में, अनदर पार्ट ऑफ द प्लैनेट। यहां से हम संकल्प कर सकते हैं कि प्योर और पॉजिटिव एनर्जी निकलकर उस आत्मा को जा रही है। यहां मधुबन में हम हैं, मधुबन की सारी प्योर एनर्जी मुझ आत्मा में समा रही है। बाबा ने इस वरदान में कहा अपने लाइट से उनको किरणें फैलाओ, उनको गोल्डन बनाओ। मुझ आत्मा से मधुबन की सारी पवित्रता मुझ में समा रही है, फर्स्ट। सेकंड, मुझ से उस आत्मा तक पहुंच रही है या उन आत्माओं तक जा रही है। कितना अच्छा पावरफुल संकल्प है ये। तो हमें आत्माओं को परिवर्तन करना है, परिवर्तित करना है। कैसे? संकल्प से। संकल्प में क्या क्या करेंगे? सबसे पहला तो एक विजन क्रिएट करना है, उस आत्मा को देखना है वो मेरे सामने है, या उन आत्माओं को देखना है जिनकी सेवा करनी है, या अगर कोई विशेष आत्माएं नहीं है तो संसार की सभी दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, अपवित्र आत्माएं, पांच तत्व, सबकी सेवा करनी है। विजन क्रिएट करना है। एक विदेश में सुनाया जाता है टेलीपैथी, स्पिरिचुअल टेलीपैथी में, एक सिल्वर ट्यूब देखो, जैसे हम यहां हैं और वो आत्मा यहां है, एक सिल्वर ट्यूब है जो यहां से जोड़ रही है उस आत्मा को मुझसे, मैं आत्मा यहां वो यहां, एक सिल्वर ट्यूब विजुलाइज करना है, मानस चित्र इमेजिन करना है, मैं यहां वो यहां, एक सिल्वर ट्यूब मुझ उसको और मुझको जोड़ रही है और मुझसे प्योर एनर्जी उस सिल्वर ट्यूब से उस आत्मा को जा रही है। ये उन लोगों ने कहा है जिन्हें आत्मा का कोई ज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मा परमात्मा से कोई मतलब नहीं है, टेलीपैथिक स्पिरिचुअल टेलीपैथी कहते हैं इसको, संप्रेषण प्रोजेक्शन करना अपने विचारों का, तो कोई भी संकल्प करना और फिर उसको भेजना। ये सेंडर रिसीवर, ये भेजने वाला, ये रिसीव करने वाला, और जितनी एकाग्रता होगी उतना वो संदेश जाएगा। किसको भी हम कुछ भी संदेश भेज सकते हैं, और ऐसा तो संसार में कई बार हुआ है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। इस पर किताबें हैं, सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें बिना इंद्रियों की सहायता के किसी को भी हम कोई भी संदेश पहुंचा सकते हैं, विदाउट एनी डिजिटल टेलीकम्युनिकेशन। तो संकल्प से सेवा करनी है, आत्माओं को परिवर्तन, और कई बार आत्माएं हमारे शब्दों से परिवर्तन नहीं होती है, उन्हें किससे करना होता है, थॉट से, केवल थॉट से, बिना उनको कुछ बोले, बिना उनको कुछ कहे, केवल विचारों से, आत्मा से, मुझ आत्मा से शक्तियां जा रही है, प्यूरिटी जा रही है, और वह आत्माएं बदल रही है। मैं पारस मणि हूं, पारसनाथ हूं, वो लोहा है, मुझसे गोल्डन किरणें उन तक जा रही है और वह आत्माएं गोल्ड की बन रही है। अलग अलग विजुअलाइजेशन करनी है, क्रिएट करनी है विजुअलाइजेशन। तो सबसे पहला साधन है आत्माओं को परिवर्तन करने का, और जो सबसे सूक्ष्म है वो है संकल्प से। हम मनुष्य तीन तलों पर जीता है, थ्री लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। पहला कर्म, सबसे एक्सटर्नल, सबसे बाहरी। दूसरा थॉट, उसके अंदर। और तीसरा फीलिंग्स, जो बाहर दिख रहा है वो बहुत बहुत ऊपरी है, उसके अंदर विचार है, उसके अंदर उसकी भावनाएं हैं। हमें हर आत्मा की भावनाओं तक पहुंचना है, यहां तक। जैसे एक व्यक्ति था, उसको हर एक यही कहता था, तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है, तुम्हारी वो बात ठीक नहीं है, तुम्हें बदलना चाहिए, तुम्हें ये भी बदलना चाहिए, तुम्हें वो भी बदलना चाहिए। हर एक आकर केवल उसको समझाता था, और वो खुद भी स्वीकार करता था कि ये मुझसे वास्तव में ये बात मेरी ठीक नहीं है, और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं बदलने की, पर मुझसे बदला नहीं जाता, मैं क्या करूं। जो भी आता था उसे करेक्शन देता था हर एक। एक दिन उसका बहुत बचपन का मित्र आता है, उसके साथ बैठता है, और बातों बातों में वो मित्र कहता है, तुम जो हो जैसे हो मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम मुझे पसंद हो। वो मित्र कहता है कि मुझे तो लोग पसंद ही नहीं करते, मेरी ये बात ठीक नहीं है, मेरा बोलना ठीक नहीं है, मेरा चलना ठीक नहीं है, मेरे विचारों में फॉल्ट है। पर ये मित्र कहता है, तुम जो भी हो मुझे तुम ऐसे ही पसंद हो। और बस वो जो पल, वो मोमेंट ही उसमें बदलाव आ जाता है। जैसे ही कोई हमें यह कहता है कि मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, हमारे अंदर परिवर्तन करने की शक्ति आती है। उसी तरह जैसे बच्चे हैं घर में, उनको रोज कहते रहो ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, नहीं बदलते, वो वही करते हैं जो उनको मना किया जाता है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म ऑब्जर्वर होते हैं, सब कुछ देखते हैं। वो देखेंगे कि बड़े जैसे करते वैसे ही करेंगे। संकल्प के तल पर पवित्र। परिवर्तन करना है, आत्माओं की सेवा फर्स्ट, सेकंड है बोल के तल पर। उसमें दो प्रकार के बोल है, एक है बिना आवाज के बोल, एक है आवाज वाले बोल। हम व्यक्ति से बात कर रहे हैं पर मुख से नहीं, मन से। हर दिन ये तीन काम करने हैं, हर दिन डेली रूटीन अमृत वेला। पहला, उन सब आत्माओं को देखो जिन्होंने हमको बहुत दुख दिया है किसी ना किसी कारण से। उन सब आत्माओं को देखो जिन्होंने अच्छा हमारे साथ व्यवहार नहीं किया, अच्छे शब्द नहीं बोले हैं, और उनको क्या करना है, क्या करना है, क्षमा कर देना है, माफ कर देना। उन आत्माओं को देखो दूसरा जिनके साथ हमने दुर्व्यवहार किया है, हमने अच्छा व्यवहार नहीं किया है, उनको बहुत दुख दिया है, हमारे शब्दों से बोल से दुखाया है उनको, उनसे क्या करना है, क्षमा मांगनी है, माफी मांगनी है। और तीसरा ग्रेटिट्यूड अर्थात धन्यवाद। उन सभी आत्माओं को देखो जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है इस जीवन में, जिनको हमने कभी थैंक यू नहीं कहा, मन से उनके लिए क्या, धन्यवाद। और उनके लिए भी जिन्होंने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया उनको भी धन्यवाद। क्यों, आईना दिखाया, और क्यों, जिन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारे खिलाफ षड्यंत्र किए, फंसाने की कोशिश की, हमें मदद की आवश्यकता थी उन्होंने मदद ही नहीं की, तब हिसाब किताब चुकतू हो गया, इसलिए धन्यवाद। और क्यों धन्यवाद, एक नया पाठ पढ़ने को मिला, जो मुरलियों में आता है उसका प्रैक्टिकल सबूत उन्होंने दिया। मुरली में आता है अत्यंत प्रज्ञ योगी अर्थात मान अपमान निंदा स्तुति, उसकी वजह से तो हुआ ये, उसने अपमान ही नहीं किया होता तो हमें अनुभव ही नहीं होता अपमान का, धोखे का, षड्यंत्र का। अच्छा हुआ उसने किया, बहुत ही अच्छा हुआ। और कोई हो तो जल्दी आ जाओ करने के लिए, जिस जिसको जो जो हिसाब चुकतू करने है फटाफट आ जाओ, जिसको जो जो बोलना है बोल दो फटाफट, क्योंकि हमें जाने की जल्दी है, जितना जिसको बोलना है बोल दे। ये तीन काम हर दिन होने चाहिए अमृत वेला, एवरी डे 5 मिनट। पहला आत्माओं को देखो हमको जिन्होंने किसी ना किसी रूप से, जिनके प्रति हमारे हमेशा निगेटिव संकल्प चलते रहते हैं, वो जैसे भी है जो भी है, एक एक महान आत्मा है। संडे की मुरली ब्राह्मण संसार की एक एक आत्मा विशेष है, श्रेष्ठ है, राज स्वराज्य अधिकारी राजा है, ताज तक तिलकधारी है, चाहे कैसे भी हो भगवान कह रहा है। इसलिए ये संसार बहुत प्यारा संसार है, अलौकिक मीठा छोटा सुंदर संसार है। तो ये तीन काम। तो दूसरा परिवर्तन जो हमको करना है वो करना है बोल के तल पर। तो बोल में सबसे पहले वो बोल जिसकी कोई आवाज नहीं है, मन से बातें करनी है आत्माओं के साथ। दूसरे बोल है आवाज वाले बोल, उससे भी परिवर्तन आत्माओं को किया जा सकता है। हमारे बोल में सबसे पहले तो प्यूरिटी की एनर्जी हो, प्योर एनर्जी। सम्मान वाले हो, वरदानी हो, उत्साह बढ़ाने वाले हो, उमंग उत्साह में लाने वाले हो, दुखी करने वाले ना हो, टॉन्ट वाले ना हो, आत्मा को घायल करने वाले ना हो। यदि हमारे किसी बोल से किसी आत्मा का पुरुषार्थ जो बहुत बढ़ रहा था अचानक नीचे आ जाता है, सूक्ष्म पाप है ये, परचिंतन परदर्शन के बोल दिखाया है कि एक राजा बहुत सारे लोगों को, ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाता है, भोजन चालू रहता है, और उसी समय एक चील एक सांप को पकड़े हुए ऊपर से जा रही है, और सांप के मुख से विष की बूंदें गिरती है उस भोजन में, और जिनको ये भोजन खिलाया जाता है वो मर जाते हैं। अब दोष किसका? चील का, सांप का, राजा का या खिलाने वालों का? ये प्रश्न उठता है, किसका दोष है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेदार है? उस गांव में एक नया ब्राह्मण आता है, पूछता है, मैंने सुना है यहां का राजा बहुत दानी है, सब ब्राह्मणों को भोजन खिलाता है। ब्राह्मण तो भोजन के शौकीन होते हैं ना, जहां ब्रह्मा भोजन पता चलता है तुरंत गाड़ी में पकड़े और पहुंच गए। तो वो ब्राह्मण आता है, पूछता है कि मैंने सुना है यहां का राजा बहुत दानी है। एक बूढ़ी माता होती है, वो कहती है, अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो राजा है ना लोगों को मारता है। बस वो धर्मराज के सैनिक ऊपर घूम रहे होते, कहते इसको पकड़ के ले जाओ, यही है। जो उत्तर प्रश्न था ना, कौन रिस्पॉन्सिबल? पर चिंतन प्रदर्शन करने वाले, जो कमेंट्स, अफवाह, बातें फैलाते, चरित्र हनन। हमें दूसरों के बारे में क्या पता है? कुछ पता है? कुछ भी नहीं पता। और फिर हमने ऐसे ही बोल दिया किसी के बारे में कुछ, तो उसका बोझ है बहुत सारा। इसके लिए हमारे बोल प्रेरणादायी बोल हो, उमंग उत्साह दिलाने वाले बोल हो, वरदानी समान वाले, इसी से आत्मा बदलेगी। दुखी भी होगी तो खुश भी होगी। तीसरा है कर्म, एक्शंस। बोल कितने भी अच्छे हो, संकल्प कितने भी अच्छे हो, परंतु यदि कर्म में नहीं दिख रहा है तो उसका कोई असर नहीं होगा, नो इफेक्ट। क्योंकि लोग क्या देखते हैं? कर्म। संकल्प तो दिखाई नहीं देते, जो सामने दिखाई देता है वो क्या दिखता है? कर्म दिखाई देते। तो आत्माएं बदलती है कर्मों को देखकर। आज के समय में जो भी लोग यहां आते हैं माउंट आबू में, बहुत सारे लोगों ने सब कुछ पढ़ा हुआ है ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में, टीवी में पहले से पढ़ के रखा है। और जब उनको पता है हम लोग घूमने जा रहे हैं माउंट आबू और वहां ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, इंटरनेट में जाके पहले ही सब कुछ पढ़ लेते, पॉजिटिव भी पढ़ते हैं तो निगेटिव भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ के आते हैं। और इतनी सारी जो बात है उसमें लेक्चर भी एक हद सुन लेंगे, जो कभी उनको अध्यात्म में इंटरेस्ट नहीं है पर सुन लेंगे इनके ये ऐसा ऐसा है। और यहां आने के बाद उनका लक्ष्य ये नहीं होता इनसे ज्ञान सुनूं, उनका लक्ष्य होता है चेक करना। एक मुरली थी, बाबा ने कहा माया के सीआईडी ऑफिसर्स आएंगे, किस लिए? तुमको चेकिंग करने के लिए, तुम जो बोलते हो वैसा है या बस ऐसे ही बोलते रहते हो, वास्तव में है या बस बातें। तो सीआईडी ऑफिसर होते ना, भेज बदल के आते चेकिंग करने के लिए। पर जहां सच्चाई सफाई है वहां कोई भी भय नहीं। ऐसा यहां पर भी हुआ है मधुबन में कभी, बहुत पहले जब दादी प्रकाशमणि थी, कुछ लोग आ गए और फिर पता भी चल गया कि ये लोग ऑफिसर्स है, चेकिंग करने के लिए आए, सरकार ने भेजा है। पर दादी ने क्या कहा? कुछ नहीं, जो चल रहा है चलने दो, उनको रहने दो। तो कर्म श्रेष्ठ हो, महान हो, और जो हमने कहा है वैसा ही कर्म हो। संकल्प, बोल और कर्म शुड बी इन अलाइनमेंट, एक समान। क्योंकि लोग क्या देखते हैं? कर्म देखते हैं। कितना भी भाषण कर लो, कितना भी संकल्प कर लो, पर कर्म में एग्जैक्टली क्या किया? जैसे एक बहुत बड़ा लेखक था और इतना अच्छा लिखता था, इतना अच्छा लिखता था, उसके इतने सारे फैन थे, एक बार गांव से दो कन्याएं उस शहर में आई और उनकी दोनों की इतनी इच्छा थी कि उस लेखक से मिलना है क्योंकि उन्होंने उसका बहुत सारा पढ़ा हुआ था और बहुत प्रभावित थी। पर जैसे ही उसके कक्ष में गई, उसके केबिन में, उसने इतने जोर से चिल्लाया उनको कोई कारण से कि बिना परमिशन तुम अंदर आ गए, गेट आउट। उनका अब तक का जो इंप्रेशन था 10 साल का वो गया, पढ़ना बंद कर दिया उसको। वो तो मिलने गई थी काली। तो कर्म प्रभावित करते हैं आत्मा को, लोग देखते हैं। हमें याद है हमारे जो लौकिक के अंकल है वो यहां आए थे एक बार, वो पुलिस कमिश्नर है थे उस समय, अभी तो रिटायर हो गए। तो उन्होंने कितनी छोटी सी बात हमको कही कि ये आश्चर्य लगा, हमारे लिए तो कितनी नॉर्मल सी बात है। उन्होंने कहा यहां वो हॉस्पिटल के वहां आए तो हॉस्पिटल का जो ड्राइवर था, गाड़ी खड़ी थी, वो गाड़ी को पहुंच रहा था ठीक से। ये तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, ड्राइवर तो अपनी गाड़ी को पहुंचता है। वो कहते हमारे डिपार्टमेंट में ऐसा कभी नहीं होता है, बोलना पड़ता है पहुंचो इतनी छोटी सी बात और इतनी बड़ी करके बताई उन्होंने। उनको लगा बाप रे ये कैसे लोग हैं, अपने आप सब होता है यहां पर। उनकी विजन ही दूसरी थी देखने की, क्योंकि वो कंपेयर कर रहे थे सब कुछ, उधर क्या और इधर क्या, उधर क्या और इधर क्या, सब जगह पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी दिखी उनको। उनको घुमाने के लिए वो वहां लेके गए थे, ट्रेवर्स टैंक देखा है सबने, माउंट में है वहां मगरमच्छ है एक, तो वहां जाके वो दुखी हो गए, यहां बैठने के लिए जगह नहीं, ये नहीं वो नहीं। और फिर वहां से पीस पार्क लेके गए और पीस पार्क जाने के बाद एकदम ही ठंडे हो गए, इतने उनकी इतनी खुशी हुई बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई वो सब वहां का देखकर। तो कर्म, छोटे छोटे कर्म, बाबा ने कहा है तुम स्टेज पर हो, तुम्हें सारा विश्व देख रहा है, सारा विश्व, इसको श्रेष्ठ करना। उसके बाद है चौथा चलन। चलन मीन्स बिहेवियर, कर्म इज एक्शन, कर्म और चलन रिलेटेड है, बट स्टिल चलन कई मूल्यों में बाबा ने कहा चलन को अलग दर्जा दिया है। चलन मीन्स बिहेवियर, किस तरह से बिहेव करते हैं। लाइन लगी हुई है, एक होता है लाइन में खड़े रहना, एक होता है लाइन तोड़ के अंदर चले जाना। हम वीआईपी है, वीआईपी सिंड्रोम, चलन बिहेवियर, किस तरह से बिहेवियर है। जैसे अगर हमें किसी का धक्का भी लग, हमारा धक्का किसी को लगता है तो हम सॉरी कहते हैं, पर हमारे व्यवहार से पता नहीं हमने कितनों को दुखी किया, उनको हमने शायद कभी सॉरी नहीं कहा। छोटी सी चीज के लिए सॉरी कहते हैं, पर बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हमने कर रखी है अपने जीवन में। ब्राह्मण बनने के बाद सूक्ष्म में हुए हुए पाप, उसके लिए कभी भी उन आत्माओं को हमने सॉरी नहीं किया है। इसलिए वो जो तीन काम दिए हैं, माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद, ये रोज कंपलसरी होना ही चाहिए, हर दिन हर दिन। आत्माओं को देखना, माफ करना, माफी मांगना और धन्यवाद करना और आगे बढ़ना, 5 मिनट्स एवरी डे एट अमृत वेला कंपलसरी। तो चलन व्यवहार, इसमें आएगा मैनर्स इटिकेट्स, उसमें बहुत सारे मैनर्स है। इस यहां पे मॉर्निंग क्लास चलती है, उसमें हम लोगों ने 8 ऐसे अलग अलग क्लासेस ली है अलग अलग भाई बहनों ने मैनर्स की, बाथरूम मैनर्स, टेबल मैनर्स, गेस्ट बन के जाते हैं कहीं पर तो उसके मैनर्स, मधुबन में आए, कमरे में क्या कर रहे हम, उसके मैनर्स, कमरा छोड़ते समय कैसा छोड़ना, जैसे आए थे कमरे में वैसा ही छोड़ के जाना है उसको। सब बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए इधर उधर, जैसे ये बेडशीट थी बस वो वैसी रहनी चाहिए, बेडशीट उधर, वो उधर, वो उधर, इधर कचरा, उधर कचरा, इधर डस्टबिन में आधा कचरा, बाथरूम साफ, जैसे आए थे वैसे ही छोड़ के जाना है उसको, क्लीन, नीट एंड क्लीन, वो मैनर्स है, हर चीज के मैनर, टेबल मैनर्स। भोजन करने जाते, चेयर पीछे खींचते, बैठते और फिर वैसे ही छोड़ के चले जाते, उसको वापस उस जगह पे नहीं रखते। कितनी छोटी सी बात है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो मैनर्स में आती है, जो हमें दूसरों से सीखना है। देखकर हम सीखते हैं उसने कैसे किया, और ये सीखने की प्रक्रिया निरंतर है, हमेशा सीखते जाना है, सीखते जाना है, सीखते जाना है। छोटा सा बच्चा बहुत सारा सिखा देता है। भोजन पूरा हुआ, चम्मच फेंकते हैं, थाली फेंकते हैं, फेंकना नहीं है कोई भी चीज को, रखना है कोई भी चीज, कीप इट, डोंट थ्रो, आवाज कम से कम हो। भोजन करते समय भी आवाज करते हैं ना बहुत सारा, ऐसे 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 अजीब अजीब आवाज करते हैं, वो सामने वाले को बहुत इरिटेटिंग हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो ये सब चलन में आता है। उसके बाद में फिफ्थ मेथड ऑफ सर्विस, संबंध संपर्क। जो भी हमारे संबंध में आए, संपर्क में आए, वो खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ ले जाए, और जरूरी नहीं है उसको ज्ञान ही पकड़ के सुनाना है, वाइब्रेशंस ले जाए, प्योर एनर्जी ले जाए। जैसे वो पुलिस के पास एक कुत्ता होता है, क्या कहते हैं उसे, स्निफर डॉग, क्या करता है वो, अगर चोरी हो गई यहां पर, सपोज ये मोबाइल चोरी हो गया, वो आएगा सब चीजों को सूंघता है, सूंघता सूंघता है, और वो चोर के पकड़ के लाता है उसको। क्यों? क्योंकि वो जो चोर था उसने अपने वाइब्रेशंस छोड़े हैं इधर, चोरी के निकृष्ट कर्म कर रहा है, लोएस्ट डिग्रेडेड वर्क। एक चोर चोरी करते समय अपने वाइब्रेशंस छोड़ जाता है। तो हम आत्माएं जो महान संकल्प कर रहे, किस तरह के वाइब्रेशंस छोड़ेंगे? जो भी संपर्क में आए उसको वाइब्रेशंस दे देना है, क्योंकि पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और ज्ञान सुनाना न सुनाना, वो देखकर पकड़ के हर एक को ज्ञान ही नहीं सुनाते रहना है। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, भाग जाते हैं फिर लोग। एक जगह हम गए थे तो किसी से मिलाने लेके गए, वो संपर्क में थे खाली, बड़े व्यक्ति थे। तो जब बहनें सब चली गई और हम उनके साथ बैठे, तो कहे एक बार ये ब्रह्मा कुमारीज वालों ने हमको अपने प्रोग्राम में बुलाया था और हमने उनकी बहुत तारीफ की, और तब से ये लोग ऐसा पीछे पड़ गए हमारे, बड़ी मुश्किल से आप लोगों से जान बचाई मैंने। हर गुरुवार आ जाते हैं, मुरली चलो, मुरली चलो, कोर्स करो, कोर्स करो, मुरली करो, मुरली कोर्स, मधुबन कोर्स, प्रोग्राम। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से आप लोगों से जान छुटाई मैंने, इतना परेशान हो गए हो। ऐसा भी नहीं हो, देखकर, किसको इंटरेस्ट है उसको सुनाओ, जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है वो आएगा धीरे धीरे, अपने आप आएगा। संपर्क में वाइब्रेशंस देने, जरूरी नहीं है कि ज्ञान सुनाना है। आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र, इसके भी ऊपर है वाइब्रेशंस वाली सेवा। संबंध, जो भी संबंधी है उनके लिए भी सेम वाइब्रेशन से सेवा करनी है। पारस उनको कैसे बनाएंगे, हम पारस हैं, हम उनको सोना बनाना है संपर्क से, संबंध से। उसके बाद में छठवा है दृष्टि वृत्ति से, दृष्टि वृत्ति अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बाबा से सुबह सुबह अमृत वेला दृष्टि लो और सृष्टि को दृष्टि दो, बाबा से दृष्टि लो और सृष्टि को दृष्टि दो, पूरा ग्लोब सामने है और उसको हम दृष्टि दे रहे, जो भी संपर्क में आ रहा है, जो भी आत्माएं आ रही है, हमारी आईज में बहुत पावर है, एनर्जी जो निकलती है कहां से निकलती है, आईज से, इधर जितनी प्यूरिटी होगी उतनी ही प्यूरिटी आईज से निकलेगी। इसके लिए भक्ति मार्ग में तीन प्रकार की दीक्षा है, एक है नयन दीक्षा, गुरु अपने शिष्य को दृष्टि देता है, सारी पावर ट्रांसफर कर देता है, एक है स्पर्श, गुरु अपने शिष्य को हाथ लगा देता है और अपनी सारी ऊर्जा उसको ट्रांसफर कर देता है, और तीसरा है मंत्र, उसके कानों में मंत्र फूंकता है और वो परिवर्तन होता है, ये तीन। तो हमारी दृष्टि बहुत शुद्ध हो, बहुत प्योर हो, जिसको भी हम दृष्टि दे इस संकल्प से दे कि इस आत्मा का परिवर्तन हो जाए। आज की मुरली में है शरीर को याद करना अर्थात व्याभिचारी याद, अगर देह को देखा और देह को याद किया तो वो आत्मा नीचे गिरेगी, और हम किसी को यदि आत्मा देखते हैं तो उसको हम करंट देते हैं, पावर देते हैं, शक्ति देते हैं। तो एक बार अमृत वेले अपने जो लौकिक घर के जितने लोग हैं उनको दृष्टि देनी है, सामने देखकर पहला काम। दूसरा, जो भी सेवा केंद्र है जहां पे भी हम जाते हैं रहते हैं उसके उसमें जितनी आत्माएं उन सबको दृष्टि देनी है। तीसरा, जो नौकरी करते हैं ऑफिस में जाते हैं ऑफिस के जितने लोग हैं बॉस साथी और जूनियर उन सबको भी एक बार दृष्टि देना है, ये तीन कंपलसरी काम है डेली। सबसे पहला लौकिक, अलौकिक जहां रोज जाते हैं जिनके रोज संपर्क में आते हैं, ऐसी टोटल 100 आत्माएं होगी जिनके हम संपर्क में, हर आत्मा अगर हमारा सर्कल देखे हम तो उसमें 100 से भी कम किसी की 50 होगी, किसी की उससे ज्यादा। और तीसरा काम जो ऑफिस की आत्माएं, बाकी विश्व और ये सब तो है ही है, हम दृष्टि की बात कर रहे हैं, उनको खास दृष्टि देनी है, बहुत जरूरी है, ताकि उनको भी टच हो जाए, उनको भी लगे कि हमें भी एक बार जाना चाहिए, वो पूछे कि कहां जाके आए, हम कहेंगे माउंट आबू जाके आए, तो वो भी पूछे। हमें याद है हमारा जो पढ़ाई चालू थी मेडिकल की, उसमें वाइवा था, वाइवा एग्जाम में वाइवा होता है ना एमडी के एग्जाम में, तो हमारा बैच था तो हम गए, तो पहले तो मेडिकल के प्रश्न पूछे, ये क्या वो क्या, और फिर 3-4 एग्जामिनर सामने बैठे थे, फिर एक ने पूछा ये क्या है, हमने कहा ये बैच है, काहे का बैच, हमने कहा ब्रह्मा कुमारी, तो कहां है, हमने कहा माउंट आबू, तो सारा वाइवा माउंट आबू पर चालू हो गया, ये मेडिसिन सब रह गया फिर वहां क्या है, फिर वहां कौन है, फिर वहां क्या बनता है, कैसे करते हैं, वो सब उस पर ऊपर ही चला गया, वाइवा इधर का पूरा रह गया। एक ने पूछा तो दूसरे और पूछने लगे, हम आ सकते हैं क्या पास बैच के, वो सब छूट गया, मेडिकल का कोई एक दो प्रश्न पूछे बस, बाकी सारा इधर से इधर चला गया। तो और वो बहुत टफ एग्जाम्स होती है, क्रिटिकल केयर की एग्जाम्स बड़ी टफ होती है, बहुत टफ, ऐसे वो लोग कभी डाइवर्ट नहीं होते, पर हो गए उस दिन तो दृष्टि और वृत्ति से हमें याद है, एक बार 2003 में यहां आने से पहले हम एक मेडिकल एक हॉस्पिटल में थे जहां पर कंटिन्यूअस इमरजेंसी आती थी और पोस्टमार्टम करने पड़ते थे, लगभग 30-40 पोस्टमार्टम हमने किए थे। तो यहां आ गए और उनमें से एक ऐसा था, क्रिमिनल केस थी वो, तो समन्स आया, तो पहली बार तो हम गए नहीं, सबने कहा कुछ जाने की जरूरत नहीं, लेटर ये टेलीग्राम भेज दिया, दूसरी बार भी नहीं गए, तीसरी बार तो वो पुलिस ही आ गए यहां पर माउंट आबू वारंट समन लेके, कि हाँ कि आपको चलना पड़ेगा, वो सेशन कोर्ट का है ये। तो हमने कहा ठीक है। तो उसको पूछा आप कैसे आए, बोले मैं अकेला आया हूँ। बोला इतना दूर वर्धा से यहाँ मेरे लिए खास ये लेके? बोले हाँ। मैंने हमने पूछा आप क्या करोगे, तो बस अब शाम की ट्रेन देखूंगा चला जाऊंगा। हमने कहा रुक जाओ थोड़ा ना। तो उसको कमरा दे दिया एक हॉस्पिटल में, फिर वो बहन जी एक थे उसका कोर्स चालू कर दिया। शाम को फिर उसको ज्ञान सरोवर लेके गए और फिर पांडव वन लेके आए और दूसरे दिन मुरली क्लास में लेके आ गए। वो जो पुलिस समन लेके आया था वारंट समन, और फिर उसको घुमाया इधर उधर, तो उसको इतना अच्छा लगा, बाप रे ज्ञान एकदम पक्का हो गया। बोले अगली बार आऊंगा तो पूरे परिवार को ही लेके आऊंगा। और पर वो डॉक्टर साहब वो याद रखना, वो समन आप आना है आपको बस, क्योंकि मैं उसके लिए आया हूं, वो आपको आना है, वो सेशन कोर्ट है। तो फिर हम गए वर्धा में, वहां पर भी इतना अच्छा, वो जो जज थे और वो केस थी बहुत पुरानी कोई क्रिमिनल केस थी, तो जज कहने अरे डॉक्टर साहब माउंट अबू से आए उनको जल्दी जाने दो। और दो दिन का केस था, हमारे दो दिन थे हियरिंग, एक ही दिन में 15-20 मिनट में पूरा उन्होंने कर दिया। तो दृष्टि और वृत्ति, जो भी संपर्क में आए उन्हें क्या करनी है, दृष्टि देनी है, प्योर एनर्जी देनी है उनको। लास्ट राइटिंग, राइटिंग से आत्माओं को परिवर्तन करना, कुछ लिखकर, खत, मैसेज, ईमेल, लेटर, दिस इज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एक खत से आत्माएं परिवर्तन हो सकती है। और इसका एक अच्छा सा उदाहरण है डेल कार्नेगी, अमेरिका का बहुत प्रसिद्ध लेखक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब किताबें हैं उनकी बहुत सारी। उन्होंने एक बुक लिखी है जो अब्राहम लिंकन पर है, लिंकन पर किताब लिखी अब्राहम लिंकन। और एक बार पूरे अमेरिका में रेडियो में उनका स्पीच था, रेडियो में स्पीच, उन्होंने एक घंटा अब्राहम लिंकन पर बोला। और दूसरे दिन उनको एक लेटर आया, उस लेटर में लिखा था कि आपने ये जो स्पीच दिया ना, यू शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड, देयर आर सो मेनी फॉल्ट्स, आपने जो लेटर स्पीच दिया, पब्लिक स्पीच दिया, उसमें कितनी सारी गलतियां हैं आपके स्पीच में, आपको पहले स्टडी करना चाहिए था अब्राहम लिंकन के बारे में, ऐसे आपने स्पीच दे दिया और पूरे अमेरिका में ब्रॉडकास्ट हो गया वो, ऐसा बहुत कुछ लिखा उसने। और डेल कार्नेगी को इतना गुस्सा आया वो पढ़ के कि मैं पूरा रिसर्च किया हूं अब्राहम लिंकन पर, एंड शी इज टीचिंग मी, इसकी उसकी इतनी हिम्मत, वो बैठते भयंकर लेटर लिखते पॉइजनस उस बहन को, वो जिसने भेजा था अननोन, पूरा लिखते हैं। पर रात हो जाती है, सोचता है इसको कल पोस्ट करूंगा। दूसरा दिन रात बीत गई, दूसरे दिन उनको लगता है थोड़ा ज्यादा ही लिख दिया उसमें, बहुत ही, इट वॉज टू पॉइजनस, सोचता है अभी थोड़ा कम वाला लिखता हूं। तो दूसरा लेटर लिखते थोड़ा सा, पर गुस्सा तो अभी भी है, उसकी इतनी हिम्मत कैसी हुई वो मुझे बताने की। दूसरा लेटर लिखते, फिर सोचते एक रात में इतना परिवर्तन आ गया, थोड़ा और रुक जाता हूं। दूसरे दिन वो लेटर रख देते हैं तकिया के नीचे। दूसरे दिन फिर सोचते अभी नया लेटर लिखता हूं एक। ऐसे 7 दिन तक 7 लेटर लिखते हैं, और 7वें दिन उसको लेटर लिखते हैं उस बहन को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मुझे पता चला कि मेरे पास भी अभी ज्ञान की कमी है, आपने जो जो बातें लिखी एकदम सही है, ऐसा ही होना, ऐसा ही है, और मैं अभी अपना और कोशिश करूंगा अच्छे से अध्ययन करने का। और शाम को वो बहन उससे मिलने आती है, एंड दे बिकम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। अगर पहला लेटर भेज दिया होता तो क्या होता, लड़ाई चालू हो गई होती है, भयंकर लड़ाई। इसके लिए जब भी गुस्सा आ जाए कुछ मत लिखना, कोई मैसेज गुस्से में नहीं करना, क्योंकि एक बार मैसेज चला गया उधर वापस तो नहीं आ सकता ना, गया तो गया। वेट, पहले रफ लिख के रख देना गुस्से में, अगर गुस्सा आ गया तो रफ लिख के रखना, अलग से पोस्ट मत करना उसको, सेव। नेक्स्ट डे अमृत वेले के बाद फिर देखना, अरे बाप रे ये नहीं, अभी दूसरा करो, दूसरा लिखो, उसको भी सेव करो, फिर तीसरा, फिर उसको भी सेव करो, फिर जब ठीक ठाक लगे तो फिर पोस्ट करना। राइटिंग इज मेथड टू ट्रांसफॉर्म अदर्स, चाणक्य ने दिखाया है। वो अमात्य राक्षस को एक लेटर से परिवर्तन करता है, एक लेटर, एक लाइन, एक वर्ड। हम जो लिखते हैं, जो दूसरों को भेजते, उससे आत्माएं परिवर्तन हो सकती है। तो दीज आर द फ्यू मेथड्स जिससे हम जो लोहा है उसको क्या कर देंगे, पारस बना देंगे। वो खुद भी पारस बन जाए, लोहे से सोना और सोने से फिर वो खुद भी पारस बन जाए, जो दूसरों को जाके सोना बनाए। ये हमको कार्य करना है, तो बहुत बड़ा कार्य है, पर उसके पहले हमें अपने आप को पारस बनाना पड़ेगा। एक लेखिका है, लास्ट में एक पोएम आपको सुना रहे हैं। ये हिंदी की बहुत प्रसिद्ध लेखिका है, महादेवी वर्मा। वो लिखती है, आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ। लिखती है, आ गए तुम, द्वार खुला है, अंदर आओ, पर तनिक ठहरो। द्योड़ी, द्योड़ी अर्थात दरवाजा, दरवाजे पर पड़े पायदान पर अपना अहम झाड़ आना। अंदर आओ, पर कैसे आओ, दरवाजे पर अपना अहंकार झाड़ के आना। मधुमाती लिपटी है मुंडेर से, अपनी नाराजगी वहां उड़ेल आना। मधुमाती, मधुमालती अर्थात लताए, बेल। वो जो बेल है, लिपटी है मुंडेर से, दरवाजे के ऊपर जो रहता है ऊंचा, उसको मुंडेर कहते हैं। अपनी नाराजगी वहां उड़ेल आना अंदर आने से पहले। तुलसी के क्यारी में मन की चटकन चढ़ा आना। तुलसी की क्यारियां होती है, वो जमीन में जो पौधे होते हैं ना, वहां पर मन की हलचल, वहां पर चढ़ा आना। अपनी व्यस्तताएं बाहरी खूंटी पर टांग आना। अंदर आने से पहले जो व्यस्तता है वो बाहरी खूंटी पर टांग है। जूतों संग हर नकारात्मकता उतार आना। जूते ही नहीं उतारना, जूते के साथ साथ अपनी निगेटिविटी को बाहर उतार के आना। बाहर खिलौलते बच्चों से, खेलते हुए बच्चों से, खुशी आनंद में जो खेल रहे, थोड़ी शरारत मांग लाना। मना थोड़ा सा बच्चा बन के आ जाना, आते समय बी ए स्मॉल चाइल्ड, बड़ा बन के मत आना, सीरियस बन के मत आना, आ रहे हो तो ऐसे आना। वो गुलाब के गमले में मुस्कान लगी है, तोड़कर पहन आना। गुलाब का जो गमला है उसमें मुस्कान टंगी है, वो थोड़ा सा तोड़ के इधर इधर पहन के आना। लाओ अपनी उलझने मुझे थमा दो, तुम्हारी थकान पर मुनहारों का पंखा झुला दू। मुनहारो अर्थात स्तुति, कोई रूठ गया होता है उसको मनाने को मुनहारा कहते हैं, उसका पंखा झुला दू। देखो शाम बिछाई है मैंने, सूरज क्षितिज पर बांधा है, लाली छिड़की है नप पर, प्रेम और विश्वास की मध्यम आंच पर चाय चढ़ाई है। घुट घुट पीना, सुनो इतनी मुश्किल भी नहीं है जीना। वो कहते हैं अंदर आना है तो ऐसे आना। तो अपने आप का परिवर्तन, अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को ही बदलना है अंदर से, पारस बन जाना है, पारस मणि बन जाना है। तो संकल्प से, बोल से, कर्म से, चलन से, संबंध संपर्क से, दृष्टि वृत्ति से, और अपने लिखान, लेखन से, राइटिंग से हम आत्माओं को बदल सके। अच्छा, ओम शांति।
जुड़ गई है मन के तार। द्वारे खुले हमको हमारे मिले आए जीवन में ये बहार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है मन की तार तुमसे ओ बाबा शक्तियां मिल रही अपार तुमसे पिता सदगुरु सखा तुम्ही तो एक हमारे हो शिक्षक तुम्ही रक्षक तुम्ही दिल के तुम्ही सहारे हो मिला सारे रिश्तों का प्यार तुमसे ओ बाबा जुड़ गई है